मित्रों, आज के जमाने में जब भारत के विद्यार्थी पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हें किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में, विदेशी विश्वविद्यालय में दाखिला मिल जाए, एक जमाना ऐसा था जब दुनिया के छात्र और विद्यार्थी और स्कॉलर्स भारत में आकर नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षण प्राप्त करते थे। और आज बड़े गर्व की बात है कि कुछ दिन पहले ही यूनेस्को ने बिहार के प्राचीन नालंदा महाविहार खंडरों को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया है। तो आइए, आज इतिहास की बातें अक्सर मैं मंगलवार को करती हूँ, तो नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय के बारे में कुछ चर्चा करें। आप सबको ये सुनकर बड़ा गर्व होगा कि विश्व को कभी शिक्षा और बौद्धित्व का पाठ पढ़ाने वाला संस्थान ठीक 821 सालों बाद फिर से शुरू हुआ है, नालंदा विश्वविद्यालय। इसके बारे में आपने भारतीय इतिहास में जरूर पढ़ा होगा। भारत में बिहार, जिसे हम पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना करते थे, जहां एक जमाने में चंद्रगुप्त मौर्य का राज था, जहां चाणक्य जैसे शिक्षक थे, उसी बिहार में लगभग 821 साल बाद नालंदा विश्वविद्यालय में फिर से जान आ गई है। 443 एकड़ क्षेत्र में फैले नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्जन्म हुआ है और ये नया संस्थान पुराने खंडर के पास में ही है। ये कहानी हम तक ले आए हैं नई दिल्ली के हमारे संवाददाता शिवनाथ झा। इस विषय पर हमने इंडियन एक्सप्रेस के सहायक संपादक श्री संतोष सिंह जी से भी बात की है, जो कि बड़े ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिहार के विषयों पर उनकी खास मजबूत पकड़ है। लेकिन आइए पहले नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास और उसकी धरोहर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। इस विश्वविद्यालय की स्थापना प्राचीन विश्वविद्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर राजगीर में की गई। आपको बता दूं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 413 AD 413 ईस्वी में हुई थी और 780 साल तक ये बौद्ध धर्म, दर्शन, चिकित्सा, गणित, वास्तु, धातु और अंतरिक्ष विज्ञान के अध्ययन का विश्व प्रसिद्ध केंद्र रहा। लेकिन 1193 में एक आक्रमण के बाद ये बिल्कुल नष्ट कर दिया गया। अगर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट नहीं किया जाता तो ये विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों इटली के बोलोन्या, काहिरा की अल अजहर और ब्रिटेन की ऑक्सफर्ड से भी सदियों पुराना होता। ये प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और प्रख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही दूसरे धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। वर्तमान बिहार राज्य में पटना से 88 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के खंडर इसके प्राचीन वैभव का अंदाजा कराते हैं। अनेक इतिहासकारों और 7वीं शताब्दी में भारत भ्रमण के लिए आए चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा इत्सिंग के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक रखे गए थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण एक वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में भी गुजारा था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म भी यहीं पर हुआ था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासकों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान दिया है। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन का भी संरक्षण मिला। इसे कई विदेशी शासकों से भी अनुदान मिलता आया है। ये विश्व का पहला पूरी तरह से आवासीय विश्वविद्यालय था, यानी बोर्डिंग यूनिवर्सिटी थी। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा पाने के लिए आया करते थे। नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया करते थे। इस विश्वविद्यालय की 9वीं शताब्दी से 12वीं शती तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति बनी रही। प्राचीन विश्वविद्यालय का जो आर्किटेक्चर है, स्थापत्य कला है, वो अद्भुत है। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थीं। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे भी थे। इनमें लेक्चर्स हुआ करते थे, व्याख्यान हुआ करते थे और अभी तक खुदाई में 13 मठ मिल चुके हैं। वैसे इससे भी ज्यादा मठ होने की संभावना है। मठ एक से अधिक मंजिल के हुआ करते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। दीपक, पुस्तक इत्यादि रखने के लिए आले बने हुए थे, शेल्व्स बने हुए थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना हुआ था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर और बहुत से प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बागीचे और झीलें भी हुआ करती थीं। सारे विश्वविद्यालय का प्रबंध कुलपति या प्रमुख आचार्य किया करते थे, जो भिक्षुओं द्वारा वोट किए जाते थे, निर्वाचित होते थे। कुलपति सलाहकार समिति की सलाह से सारा प्रबंध करते थे। प्रथम समिति शिक्षा तथा पाठ्यक्रम संबंधी कार्य देखती थी और जो दूसरी समिति थी वो सारे विश्वविद्यालय की आर्थिक व्यवस्था तथा प्रशासन की देखभाल करती थी। विश्वविद्यालय को दान में मिले 200 गांवों से प्राप्त उपज और आय की देखरेख यही समिति करती थी। इसी से विद्यार्थियों के भोजन, कपड़े तथा रहने का बंदोबस्त भी होता था। 7वीं सदी में ह्वेनसांग के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख शीलभद्र थे, जो एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान हुआ करते थे। एक प्राचीन श्लोक से ज्ञात होता है, प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट भी इस विश्वविद्यालय के प्रमुख रहे थे। नालंदा शिक्षा और ज्ञान विज्ञान का प्राचीनतम केंद्र रहा है तथा कभी महान विश्वविद्यालय रहे इस विख्यात नालंदा के खंडहरों को यूनेस्को विश्व धरोहर बनाया गया है।